हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 37. सुनैना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और सामने की दीवार पर अपने हाथ रख दिए। कुछ देर पहले तक वो नहीं चाहती थी कि आदित्य उसे इस तरह आधे अधूरे कपड़ों में देखे, लेकिन अब आदित्य की ये निकटता उसे बहुत सुकून दे रही थी। वो जैसे बस उसके करीब आकर बाकी सब कुछ भूल जाना चाहती थी। उधर दूसरी तरफ आदित्य का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी सिर्फ पीठ पर हाथ फेरने तक नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर सुनैना की पीठ और गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। सुनैना को आदित्य के इतने आगे बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो तुरंत उसे रोकते हुए बोली, आदित्य तुम ये क्या? लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि आदित्य ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी थी और उसके कान के पास आते हुए बोला, श्श। आदित्य के ऐसा करने पर सुनैना ने भी आगे कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं था कि आदित्य ने उसके मुंह पर इतनी कसकर उंगली रखी हो कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आदित्य ने तो बस हल्के से अपनी उंगली उसके होठों पर रखी थी। वो तो सुनैना जानबूझकर ही शायद कुछ और अब बोलना नहीं चाह रही थी। उस लम्हे में वो बस उस लम्हे को जी लेना चाहती थी। आदित्य रुका नहीं और उसी तरह सुनैना की पीठ और गर्दन पर किस करते हुए उसके कंधों पर भी किस करने लगा। सुनैना भी अब उसके इस तरह किस करने पर खुद को और ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई और जल्दी से पलटकर आदित्य के कसकर गले लग गई। आदित्य ने भी उसे कंधे पर एक और किस करते हुए अपनी बाहों में पूरी तरह से भर लिया। आदित्य, प्लीज, मुझे नहीं लगता हमें इस तरह एक दूसरे के करीब आना चाहिए, सुनैना उसी तरह आदित्य के कसकर गले लगे हुए बोली। उसके लफ्ज उसकी हरकतों से एकदम उलट ले। वो खुद आदित्य को एकदम कसकर पकड़कर उसके एकदम नज़दीक उसकी बाहों में थी उस वक्त और उसे ही अपने करीब आने से मना कर रही थी। आदित्य ने सुनैना की बात सुनी और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने दोबारा से अपना हाथ सुनैना की पीठ पर रखते हुए उसके गले लगे हुए ही उसके टॉप की चेन बंद कर दी और बोला, हो गया, लेकिन तुम अगर चाहो तो अभी भी मेरे गले लगे रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम्हें ही कुछ प्रॉब्लम होने लगती है अचानक से। सुनैना आदित्य की इस बात का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन वो आगे क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से आदित्य से दूर हो गई और फिर बिना एक पल भी वहाँ पर रुके सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई। आदित्य उसे इस तरह शर्माकर वहाँ से भागता हुआ देखकर अब खुलकर मुस्कुरा दिया और बोला, अरे कपड़े तो लेकर जाती, अब चेंज क्या करोगी? सुनैना ने आदित्य की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो वॉशरूम के अंदर से दरवाज़ा बंद करके दरवाज़े से टिक कर खड़ी हो गई और तेज़ तेज़ सांसें भरने लगी। ये क्या हो जाता है मुझे? उसके इतना करीब आकर कितना अलग एहसास है ये, कितना पाकीज़ा और दिल और रूह को सुकून देने वाला। आज से पहले तो मुझे किसी के साथ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ, तो फिर इसके साथ ही क्यों? इसे तो मैं अभी शादी वाले दिन ही मिली हूँ और आज भी ठीक तरह से जानती तक नहीं, तो फिर क्यों, क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब? रोक क्यों नहीं पाती मैं उसे और ना ही खुद को? आदित्य की बाहों से छूटकर इस तरह सीधे वॉशरूम के अंदर चले जाने के बाद सुनैना के मन में ये सारी बातें ही चल रही थीं और वो ये सब सोच सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक के बाद एक सवाल ही थे और जवाब उनमें से एक का भी नहीं। कितना अच्छा लगता है इस तरह जब तुम मेरी बाहों में आती हो और इस एहसास के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नज़दीक रहने के लिए। लेकिन ये बोलते बोलते आदित्य के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई और उसके चेहरे पर काफी सख्त भाव उभरने लगे और आदित्य सामने मेज पर रखी शराब की बोतल उठाकर फिर से शराब पीने लगा। सुनैना जब थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने सोचा कि आखिर कब तक वो इस तरह बाथरूम में ही रहेगी, आखिर बाहर तो निकलना ही होगा ना उसे। और इसके साथ ही वो चेंज करने वाले कपड़े भी लेकर अंदर नहीं गई थी, इसलिए वो चेंज भी नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद वो उसी तरह से बाहर आ गई। बाहर आकर सुनैना ने देखा कि आदित्य शराब की बोतल से सीधे ही मुंह लगाकर शराब पी रहा था। ये देखकर सुनैना के मन में अभी तक आदित्य के लिए जो भी जज्बात थे वे सारे एकदम ही गुस्से में बदल गए और वो आदित्य के एकदम सामने आते हुए उससे बोली, क्या है तुम्हारा भी, कुछ समझ नहीं आता मुझे, अभी तक तो एकदम ठीक थी और अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है तुमने? मिलता क्या है ऐसे ड्रिंक करके, खुद ही अपनी जान के दुश्मन हो तुम। हाँ ठीक है, तुम्हें इससे क्या, मैं शराब पीऊँ या कुछ भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना। उस दिन तुमने बोला था शादी वाले दिन कार में ही। सुनैना की बात सुनकर आदित्य उसे उसकी ही कोई बात याद दिलाते हुए बोला, नशे में हो लेकिन फिर भी ताना मारने का मौका मत छोड़ना, और बातें भी सारी इतनी अच्छी तरह से याद हैं। वाओ, काफी प्रैक्टिस होगी नो तुम्हें तो अब तक नशे में रहने की। आदित्य की बात सुनकर सुनैना भी थोड़े गुस्से में उसी तरह तंजिया लहजे में बोली, वो तो दिख ही रहा है कि ताना कौन मार रहा है, जाओ चुपचाप सो जाओ जाकर। वेट, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। बोलते हुए आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतना ज्यादा नशे में होने की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया और लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि पास खड़ी सुनैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की हाइट और बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से सुनैना उसे संभाल नहीं पाई और वो दोनों एक साथ ही जमीन पर गिर पड़े। सुनैना आदित्य के नीचे दबसी गई और आदित्य उसके ऊपर था। हटो हटो मेरे ऊपर से, पता नहीं कितनी ड्रिंक कर रखी है तुमने, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, मुझसे तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही। बोलते हुए सुनैना अपने दोनों हाथों से आदित्य की चेस्ट को पुश करते हुए उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। तभी आदित्य हल्का सा साइड हुआ और सुनैना के ऊपर से हट गया, लेकिन उसने सुनैना के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिए और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, यू आर सो ब्यूटिफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो सुनैना, और तुम्हारी ये आंखें, जब भी मैं इनमें देखता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खो गया हूँ इनमें। आदित्य, तुम अभी अपने होश में नहीं हो इसलिए ये सब। सुनैना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए आदित्य को उसी तरह से पीछे धकेलते हुए बोली और उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदित्य ने उसके दोनों हाथ नहीं छोड़े, जिस वजह से वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाई। मैं पूरे होश में हूँ, मैंने कहा था ना, मुझे आदत है इतने नशे में रहने की, और इसलिए ही सब याद भी रहता है मुझे, सो डोंट वरी। आदित्य सुनैना की तरफ देखते हुए एकदम मदहोश सी आवाज में बोला, तो सुनैना भी उसी तरफ ही देखने लगी, तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो, क्योंकि होश में तो तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ और हटो हटो मेरे ऊपर से। सुनैना आदित्य से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा हाथ, कभी भी नहीं, आदित्य सिंघानिया किसी का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता, और अगर छोड़ दिया ना तो फिर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी बाकी सब की तरह, जैसे कि बाकी सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सुनैना के बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए आदित्य ने ये सब उसकी आंखों में देखते हुए एकदम मासूमियत से कहा, तो सुनैना ने भी अब उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आदित्य की आंखों में और उसकी बातों में उसे एक दर्द नजर आया। वो भले ही समझ नहीं पाई कि आदित्य ऐसा क्यों बोल रहा है कि सब उसे छोड़कर चले जाते हैं और आखिर कौन आदित्य को छोड़कर चला गया, लेकिन उसका हाथ आदित्य ने इस वक्त इतने ज्यादा प्यार और विश्वास से पकड़ा हुआ था कि सुनैना का खुद ही उससे दूर जाने का मन नहीं हुआ और वो उसके साथ वहीं पर एकदम आराम से ही लेट रही। आदित्य भी सुनैना के कंधे पर अपना सिर रखे हुए कुछ ही देर में सो गया और सुनैना अपने हाथ आदित्य के बालों में फेरती हुई उसके साथ वहीं उसी तरह जमीन पर ही लेटी रही और उसके बारे में काफी कुछ सोचने लगी। हाँ, सच में इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आखिर क्यों है ये ऐसा और क्यों करता होगा इतनी ड्रिंक, जबकि बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है ये, आज तक इसने मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती या तेज आवाज में चिल्लाकर बात तक नहीं की है। क्या क्या हो तुम आदित्य, हर वक्त हर लम्हा मुझे खुद के बारे में ही सोचने पर मजबूर कर देते हो, ऐसा लगता है मुझ पर मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा होता जा रहा है, कुछ इस तरह बसते जा रहे हो तुम मेरे ख्यालों में, और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मैं खुद भी तुम्हें अपने इन ख्यालों से निकालना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है तुम्हारा ये कुछ पलों का साथ, तुम्हारी ये नज़दीकी, मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ अब खुद को। आदित्य के बारे में ये सब सोचते हुए सुनैना को भी कुछ देर बाद नींद आ ही गई आखिर क्रमशः।